एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो सच कहूं तो हमारे आज के समाज पर एक बहुत तीखा सवालिया निशान लगाता है।
बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं नाना क्वामे अजेबरेनिया के पहले उपन्यास चेन गैंग ऑल स्टार्स की।
और लेखक अपने आप में समकालीन अमेरिकी साहित्य की एक बहुत ही ताकतवर और आप कह सकते हैं नई आवाज है।
हाँ, वो घाना से आए अप्रवासी माता पिता की संतान है और उनका ये अनुभव उनकी कहानियों में बहुत गहराई से उतरता भी है।
और उनकी लिखने की शैली भी वो बहुत खास है, जिसे अंग्रेजी में स्पेक्युलेटिव फिक्शन कहते हैं।
हाँ, स्पेक्युलेटिव फिक्शन मतलब वो कहानियां जो पूछती हैं अगर ऐसा हो तो,
ये ले जाती हैं
ये दिखाने के लिए कि अगर हम नहीं सुधरे तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है।
सही काम।
जैसे इस उपन्यास में प्राइवेट जेल का जो आइडिया है वो तो आज भी मौजूद है, लेखक ने बस उसे उसके सबसे डरावने अंजाम तक पहुंचा दिया है।
हाँ, जैसे 2018 में उनके कहानी संग्रह फ्राइडे ब्लैक ने भी कुछ ऐसा ही किया था और साहित्य जगत में एक तूफान सा ला दिया था।
बिल्कुल, और चेन गैंग ऑल स्टार्स जो 2023 में प्रकाशित हुआ उनका पहला उपन्यास है और आते ही इसे नेशनल बुक अवार्ड के लिए भी चुना गया।
तो चलिए इस साहसिक और बेचैन कर देने वाली दुनिया में उतरते हैं।
ये उपन्यास हमें आज से कुछ ही साल आगे के अमेरिका में ले जाता है, जहां एक बहुत ही भयावह बदलाव आ चुका है।
क्या हुआ है वहां?
देश की जो जेल व्यवस्था है उसे पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया है और उन्होंने इसे एक क्रूर मनोरंजन कार्यक्रम में बदल दिया है। लग रहा है
अजीब से ज्यादा खतरनाक है। इस कार्यक्रम का नाम भी बड़ा व्यंग्यात्मक है, क्रिमिनल एक्शन पेनिटेंट एंटरटेनमेंट, यानी CAPE।
CAPE?
हाँ, और नाम में एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन शब्द डालकर ही वो एक तरह से इसकी क्रूरता को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये तो बहुत चालाकी भरी बात है। मतलब हिंसा को मनोरंजन का चोला पहना कर बेचा जा रहा है, तो इस केप प्रोग्राम में होता क्या है?
इसमें जो सजायाफ्ता कैदी हैं, उन्हें लिंक्स कहा जाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा लड़ाइयों में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाता है।
क्या? मतलब?
हाँ, ये पुराने जमाने के ग्लैडिएटर्स की तरह लड़ते हैं और इन लड़ाइयों का सीधा प्रसारण होता है।
सीधा प्रसारण, जिसे लोग अपने घरों में बैठकर देखते हैं,
लाखों लोग।
ये तो अविश्वसनीय रूप से भयानक है। मतलब कैदियों को सच में एक दूसरे को जान से मारने के लिए मजबूर किया जाता है और लोग इसे किसी स्पोर्ट्स इवेंट की तरह देखते हैं।
लिंक्स पर सट्टा लगाते हैं, उनके नाम की टी-शर्ट्स और दूसरा सामान खरीदते हैं। समाज इस हिंसा का आप कह सकते हैं आदि हो चुका है। और हाँ, यहाँ एक लालच भी दिया गया है, जो लिंक 3 साल तक इन लड़ाइयों में जिंदा बच जाएगा उसे आजादी देने का वादा किया जाता है।
वाह, यानी जिंदा रहने की कीमत है दूसरों की जान लेना। और इस पूरी क्रूरता और पागलपन के बीच में, जैसा कि अक्सर होता है, एक प्रेम कहानी भी है।
बिल्कुल, लोरेटा थर्वर और हमारा स्टैकर, यही दो पात्र इस उपन्यास का दिल है, इसकी आत्मा है।
तो बताइए इनके बारे में।
लोरेटा थर्वर वो इस कैप प्रोग्राम की बेताज क्वीन है, एक महान योद्धा, एक जीती जागती किंवदंती।
अच्छा।
लोग उसे उसके खास हथियार शी हैमर के लिए जानते हैं और वो अपनी आजादी के बेहद करीब है, बस कुछ महीने ही बाकी हैं।
लेकिन
वो एक गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रही है।
किस तरह का संघर्ष?
वो इस बात से जूझ रही है कि इस आजादी को पाने के लिए वो क्या बन गई है।
मतलब?
एक कातिल।
हाँ, एक कातिल।
हर रात उसके जहन में उन लोगों के चेहरे घूमते हैं जिन्हें उसने लड़ाई में मारा है, तो उसके अंदर एक कातिल और एक प्रेमी के बीच लगातार एक जंग सी चलती रहती है। वो सोचती है कि अगर मैं आजाद हो भी गई तो क्या मैं इन यादों से कभी आजाद हो पाऊंगी।
ये तो रूह कंपा देने वाला सवाल है। और जाहिर है इस सफर में वो अकेली नहीं है, उसकी एक साथी भी है, हमारा स्टैकर।
हमारा स्टैकर, जिसे हरिकेन स्टैक्स के नाम से जाना जाता है, वो थर्वर की साथी भी है और प्रेमिका भी।
अच्छा।
लड़ाई और प्यार दोनों में वो उसके साथ खड़ी है। अगर थर्वर इस कहानी की ताकत है तो स्टैक्स इसकी आत्मा है, इसका भावनात्मक केंद्र है।
वो थर्वर से अलग कैसे है?
वो थर्वर के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक है। वो इस पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाती है।
मतलब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है बल्कि एक विचारक भी है।
हाँ, वो समझती है कि ये महज एक खेल नहीं बल्कि आधुनिक गुलामी का एक नया और क्रूर रूप है,
जहां खासतौर पर अश्वेत और हाशिए पर मौजूद लोगों के शरीर से मुनाफा कमाया जा रहा है।
बिल्कुल, इसलिए उनका रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इस जालिम सिस्टम के खिलाफ ये एक तरह की बगावत है।
तो उनका प्यार ही इस सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है, उस हिंसा और नफरत के बीच उनका एक दूसरे के लिए समर्पण ही उनकी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है।
हाँ, उनका रिश्ता कोमलता का एक अभयारण्य है, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ वो अपनी इंसानियत को बचाकर रख पाते हैं।
और उपन्यास में और भी पात्र होंगे यकीनन?
हाँ बिल्कुल, दूसरे कैदी हैं जिनकी अपनी दर्दनाक कहानियां हैं, मुनाफे के भूखे कॉर्पोरेट अधिकारी हैं, हिंसा को महिमा मंडित करने वाले कॉमेंटेटर हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी भी हैं जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ये सब मिलकर इस दुनिया को और भी ज्यादा असली और डरावना बनाते हैं।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? लेखक हमें इनकी जिंदगी की लय कैसे दिखाते हैं?
कहानी के शुरुआत में ही लेखक हमें थर्वर और स्टैक्स की जिंदगी की उस क्रूर लय से परिचित कराते हैं।
हाँ।
हर बड़ी लड़ाई से पहले की जो खामोशी और तनाव होता है।
हाँ।
लड़ाई के दौरान की खूनी अराजकता। हाँ। और उसके बाद का वो भयावह सन्नाटा
जिसमें या तो जीत का खोखलापन होता है या किसी अपने को खोने का गम।
बिल्कुल। और इसी हिंसा के बीच लेखक हमें उनके कोमल क्षण भी दिखाते हैं।
जैसे?
जैसे वो कैसे एक दूसरे के घावों पर मरहम लगाते हैं, कैसे चोरी छुपे कुछ पल साथ बिताते हैं। ये क्रूरता और कोमलता का जो विरोधाभास है ना, वो पाठक को अंदर तक खिला देता है।
और मैंने सुना है कि लेखक ने कहानी कहने के लिए बहुत ही अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाती है। मैं फुटनोट्स की बात कर रही हूँ।
हाँ, ये इस उपन्यास की सबसे खास बातों में से एक है। कहानी के बीच बीच में अचानक लंबे लंबे फुटनोट्स आते हैं।
और ये कोई साधारण फुटनोट्स नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इन फुटनोट्स में लेखक एक अकेडमिक और व्यंग्यात्मक लहजे में बताते हैं कि ये क्रूर कैपे प्रणाली कैसे बनी।
मतलब कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक एक असली अकेडमिक लेख जैसा कुछ आ जाता है।
हाँ, और वो इस काल्पनिक कार्यक्रम की जड़ें सीधे तौर पर अमेरिका में गुलामी, नस्ली अन्याय और जेलों के निजीकरण के वास्तविक इतिहास से जोड़ते हैं।
ये तो बहुत ही साहसिक प्रयोग है। ये तो पाठक को कहानी की दुनिया से खींचकर असल दुनिया के सच पर पटकने जैसा है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी भयावह चीजें वो शून्य में पैदा नहीं होती, उनके पीछे एक लंबा और दर्दनाक इतिहास होता है।
तो ये फुटनोट्स कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि उसे एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ देते हैं। ये पाठक को मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ कहानी का मजा ना ले बल्कि ये भी सोचे कि हमारा समाज कैसे ऐसी क्रूर व्यवस्थाओं को न सिर्फ स्वीकार करता है
बल्कि कभी कभी उनका जश्न भी मनाता है।
सही कहा।
और कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब थर्वर की आजादी की तारीख नजदीक आने लगती है।
तो फिर क्या होकर?
केप चलाने वाले अधिकारी वो अपनी सबसे बड़ी स्टार और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली एसेट को खोना नहीं चाहते, तो रेटिंग्स और मुनाफे के लिए वे साजिश रचते हैं।
वो खेल के नियम बदल देते हैं।
हाँ, अचानक और ज्यादा खतरनाक विरोधियों को मैदान में उतारते हैं।
और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है?
सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब एक ही चेन के लिंक्स को, यानी एक ही टीम के सदस्यों को, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की संभावना बनती है।
ओह।
एक ऐसा नियम लाया जाता है जो थर्व और स्टैक्स को एक दूसरे के खिलाफ मौत की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर सकता है।
ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब क्लाइमेक्स सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है बल्कि एक नैतिक और भावनात्मक चुनाव है।
हाँ।
सवाल ये है कि क्या थर्वर अपनी आजादी के लिए खेल को उसके खूनी अंत तक खेलेगी, चाहे इसकी कीमत स्टैक्स की जान ही क्यों ना हो,
या वह इस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देगी भले ही इसमें उसकी अपनी जान चली जाए।
ये एक असंभव चुनाव है।
हाँ।
और यही चुनाव इस कहानी को सिर्फ एक्शन से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है।
हाँ, और यहीं से उपन्यास अपने सबसे बड़े सवालों पर आता है। ये कहानी सिर्फ एक्शन या रोमांच के बारे में नहीं है।
नहीं, ये हमारे समय की बहुत जरूरी बहसों को छेड़ती है।
सबसे पहला और सबसे बड़ा विषय तो जेल औद्योगिक तंत्र ही है।
और ये उपन्यास इस तंत्र का एक भयानक रूपक है। ये उस व्यवस्था की आलोचना करता है जहाँ जेलें सजा देने की जगह से ज्यादा मुनाफे का धंधा बन गई है।
हाँ, उपन्यास इस विचार को उसके तार्किक अंत तक ले जाता है जहाँ इंसानी दर्द को प्राइम टाइम मनोरंजन के रूप में पैक करके बेचा जा रहा है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पूंजीवाद हर चीज को, यहाँ तक कि न्याय को भी, एक बिकाऊ वस्तु में बदल सकता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सजा का मकसद सुधारना है या सिर्फ एक खूनी तमाशा बनाना।
एक और मजबूत विषय जो हमने पहले भी छुआ वो है प्रेम का एक प्रतिरोध के रूप में उभरना।
निश्चित रूप से, इस विनाशकारी दुनिया में जहां हर किसी को सिर्फ एक नंबर या लड़ने वाली मशीन समझा जाता है, वहां थर्वर और स्टैक्स का प्यार एक विद्रोह की तरह है।
हाँ, उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण, उनकी कोमलता,
ये सब साबित करता है कि सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी सहानुभूति और मानवीय जुड़ारों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता।
उनका प्यार उस सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती है
जो उन्हें तोड़ना चाहता है,
उनकी इंसानियत छीन लेना चाहता है।
हाँ,
लेखक प्रशंसकों और मीडिया के जरिए समाज पर भी एक आईना घुमा देता है। सामाजिक मिलीभगत और तमाशबीनी का विषय ये बहुत प्रमुखता से उभरता है।
हाँ, यहाँ असली खलनायक कौन है? वो कैदी जो लड़ने पर मजबूर है, वो कॉर्पोरेट अधिकारी जो मुनाफा कमा रहे हैं, या
वो करोड़ों लोग जो इसे देखकर ताली बजा रहे हैं?
बिल्कुल, लेखक हमसे यही सवाल पूछता है कि जब हिंसा को मनोरंजन बना दिया जाता है तो समाज कितनी आसानी से क्रूरता में भागीदार बन जाता है।
उपन्यास में उन प्रशंसकों के अध्याय हैं जो थर्वर को एक स्पोर्ट्स हीरो की तरह पूछते हैं, लेकिन उसकी इंसानियत, उसके दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
और ये हमें अपने समय के रियलिटी टीवी, सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो देख रहे हैं उसमें हमारा ही क्या भूमिका है।
बिल्कुल, और आखिर में आजादी के भ्रामक स्वरूप का विषय, ये उपन्यास इस वादे पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो इस पूरे सिस्टम की नींव है।
बिल्कुल, पूरी व्यवस्था आजादी के इसी सुनहरे सपने पर टिकी है, लेकिन उपन्यास पूछता है क्या सिर्फ जंजीरों से मुक्ति ही आजादी है?
थर्वर इस सवाल से जूझती है कि अगर वो आजाद हो भी गई तो वो किस तरह की इंसान बचेगी? क्या वो उन यादों और भूतों से कभी आजाद हो पाएगी जिन्हें उसने अपने अंदर कैद कर रखा है?
तो सच्ची आजादी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है,
और एक क्रूर व्यवस्था उस सच्ची आजादी को लगभग नामुमकिन बना देती है। ये एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला विचार है।
अंत में ये उपन्यास एक आईना है, ये दिखाता है कि कैसे समाज बड़ी आसानी से दूसरों के दर्द को एक उपभोग की वस्तु बना सकता है,
और कैसे न्याय और मनोरंजन के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसे नायक बनाते हैं, किसके दर्द को नजरअंदाज करते हैं, और सच्ची आजादी और इंसानियत का असल में क्या अर्थ है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।